أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کلام جدید کے اندر ہماری بحث الحاد کے بارے میں چل رہی تھی، اور جو عنوان ہم بیان کر رہے تھے، مسئلہ جس پر ڈسکس ہماری چل رہی تھی الحاد کے اندر، وہ ہے اسباب الحاد، کہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے الحاد کا سہارا لیا جاتا ہے، یا ملحد ہو جاتا ہے، یا ملحد اس کا سہارا لیتے ہیں. دوسرا سبب کہ جو الحاد کا سبب بنتا ہے یا ملحدین اس کا سہارا لیتے ہیں، وہ ہے کہ جو چیز علت حقیقی نہیں ہے اس کو علت حقیقی بنا کر پیش کرنا. یعنی ایک ایکٹیویٹی دیکھی انہوں نے، ایک فعالیت دیکھی، اور دیکھا کہ یہ چیز مؤثر واقع ہو رہی ہے، تو بس یہی علت ہے، اس کو مان کر پھر ہر چیز کا انکار کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جب ہم دقت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ علت نہیں ہے، حقیقت میں اس سے پہلے والی ایک چیز علت تھی کہ جس کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں کی، فقط کے فیصلہ کر دیا انہوں نے. درست ہے؟ عربی میں اگر اس مغالطے کو ہم بیان کرتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر، ما بالعرض کو ما بالذات بنا کر پیش کرنا، خلط کر دینا ما بالعرض میں اور ما بالذات میں. یعنی جو حقیقت میں علت ہے، جو ایک تاثیر ایجاد کرتی ہے ایک شے کے اندر، وہ چیز نہیں ان کو نظر آتی، اور جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، جو ایکٹیو ہے، جو تاثیر دکھا رہی ہوتی ہے مادی طور کے اوپر، اس کو حقیقی سمجھ کر نتیجہ دے دیتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے ملحدین کے اندر، اور میں آج اسی کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جوان اس بات کی طرف حتمن اور حتمن توجہ کریں. شاید جب سے یہ درس شروع کیا ہے بار بار اس کا تکرار ہو رہا ہے کہ علوم کی حد بندی ہے، اور ہر علم اپنی حد میں رہ کر فیصلہ کر سکتا ہے. جب سائنسی علوم کی ہم حد بندی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، کہ جس کے اوپر ہم نے پچھلے درسوں میں تفصیل سے بحث کی ہے، کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ حس اور تجربہ ہے، اور حس اور تجربے کے حوالے سے پھر تفصیل سے بات کی اس کو، کہ مشاہدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ حواس خمسہ کے ذریعے یا حواس خمسہ میں سے کسی ایک حس کے ذریعے مستقیم طور پر اس شے کو آبزرو کریں یا اس کے اثر کو آزمائش کریں آپ مستقیم طور پہ، اور پھر جب یہ ہو جائے تو سائنسدان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جس پر تجربہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر اگلے ایسے فرد پر حکم لگا دے کہ جس پر ابھی تجربہ نہیں ہوا. تجربے تک محدود رہنا ضروری ہے اگر فقط حس اور تجربے پر اکتفا کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، سائنسدان کا کام فقط اور فقط حسیات اور مادیات کے اندر فیصلہ کرنا ہے، نظریات دینا ہے، اور جو ماوراء حس ہیں وہ امور کے جو میٹا فزک امور شمار ہوتے ہیں، وہ چونکہ حس کے دائرہ سے باہر ہیں، روشی اعتبار سے اگر سائنسدان اس میں مداخلت کرتا ہے جا کر، تو وہ غلط شمار ہوتا ہے علمی طور پہ. سادہ سی اس کی مثال آپ لے لیں، ایک میتھمیٹکس پڑھا ہوا انسان اگر बायोलॉजी के अंदर जाके नजरिया देता है, तो वो डॉक्टर जो बायोलॉजी का माहिर है क्या उसको अप्रिशिएट करेगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप आकर हमारे नजरियों को बयान, मैं बायोलॉजी के अंदर नजरिया दे रहा, हालांकि सारी जिंदगी उसने पढ़ी जो है वो मैथमेटिक है, रियाजी ही पढ़ी है उसने, लेकिन अब वो इजारे नजर करने लग गया है बायोलॉजी के अंदर जाके, तो क्या कहते हैं आपका काम नहीं है ये? या एक और मिसाल देता हूं, मुलेदीन के साथ मरबूत मिसाल, यानी अगर कोई दीनदार इंसान नजरिए इर्तिका के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हो तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं वो कि ये आपका मैदान ही नहीं है, ये तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और बायोलॉजी भी कौन सी, वही इर्तिकाई नजरिया इर्तिका के जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, चूंकि वो एक शाख अलग हो गई है, उसका पढ़ना जो है आपके लिए ज़रूरी है, आपने तो पढ़े ही नहीं है ये, डार्विन को खुद से देखा ही नहीं है आपने, और डार्विन के जो उलूम, जिस इल्म की बुनियाद पर डार्विन ये नजरिया दे रहा है, वो जब आप माहिर नहीं है उसके अंदर, तो आपको हक हासिल नहीं है कि आप डार्विन के नजरिए के बारे में कोई फैसला करें, ये कहते हैं या नहीं कहते, कहते हैं। तो जब आपका नजरिया रद्द हो तो यह बात आपको याद आती है, तो इस तरफ से आपको याद क्यों नहीं आती कि जब आप एक साइंसी तहकीक के जरिए एक इल्लत को कश्फ करते हैं, और कश्फ करने के बाद फिर फौरन नजरिया देना शुरू कर दें, बस हमें अब खुदा की जरूरत नहीं है, तो आया यह खुदा का इनकार करना? या मसलन आप आकर क्या करते हैं, न्यूरोसाइंस का सहारा लेते हैं, और बहुत बाबरकत इल्म है ये, और ये जो बातें आपकी खिदमत में बयान की जा रही हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम जो है वो तजर्बी उलूम के मुखालिफ हैं, तजर्बी रविश के मुखालिफ हैं, ना, ये जरूरी है बशर के लिए और बशर की खिदमत के लिए बने हैं, और खिदमत कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बहस हमारी हो रही है गलत रविशों के ऊपर। अब न्यूरोसाइंस को ही आप मद्देनजर रख लें कि इस इल्म का सहारा लेकर इंसान के जो मग़्ज़ की फ़ालियत है उसके अंदर पोशीदा जो असरार थे उसको कश्फ कर दिया गया। आज जो हमें पता है चल गया है कि इंसान अगर तफक्कुर करता है तो मग़्ज़ का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है, इंसान जब एहसासाती होता है तो किस किस्म की उसके बदन के अंदर या मग़्ज़ के अंदर जो है वो एक्टिविटी होती है, फ़ालियत, कौन सा हिस्सा उसका एक्टिव हो जाता है, ये न्यूरोसाइंस का वजीफा था, और उसने आकर इस राबते को कश्फ भी कर दिया कि अगर तफक्कुर हो तो ये हिस्सा एक्टिव होता है, अगर इंसान गमगीन हो तो ये हिस्सा एक्टिव होता है, खुश हो तो ये एक्टिव होता है, ये चीजें बता रहा है आकर। अब यहां पे सिलसिला खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाने लगा, कहा यह जाने लगा बस जो कुछ भी इंसान की हकीकत है यही मग़्ज़ है उसका, रूह नाम की चीज जो कि मग़्ज़ से हटकर बयान की जाती थी, ज़हन से हटकर बयान की जाती थी, उसका कोई वजूद नहीं है। अब यह आपको किसने हक दिया, आप हैं एक साइंसदान, जिस रविश के साथ आप तहकीक कर रहे हैं वो है तजुर्बी और हिस्सी, और तजुर्बे और हिस का दायरा कार फकत मादियात के अंदर पाया जाता है, और रूह जिसको फलसफा साबित करता है वो मुजर्रद है, और मुजर्रद चीज हिस से नजर नहीं आती है, तो जो चीज नजर नहीं आती आपके दायरा कार में नहीं आती, आपको हक भी नहीं बनता कि आप उसके बारे में कोई फैसला करें, तो आप कैसे न्यूरोसाइंस का सहारा लेकर कहते हैं रूह नाम की कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है इंसान की हकीकत यही मग़्ज़ है। यहां पर वो क्या काम कर रहा है, यहां एक सबब को देखते हुए कि जो कि हकीकी सबब नहीं है तफक्कुर का, उसको देखते हुए हकीकी सबब करार दे दिया, और जो उसके बाहर है और उसके दायरा कार से बाहर है, जो हकीकी तौर पर इसका सबब बन रहा है, उसका इनकार कर दिया गया। आकर ये मुगालता करते हैं, आगे कहते हैं देखा रूह तो नजर ही नहीं आ रही, दिखाओ रूह नजर आ ही नहीं रही, लेकिन हम देखते हैं कि ये तुम तफक्कुर कर रहे हो, तुम्हारा फलाना हिस्सा देखो मुतहरिक हो रहा है, बस वो पर इसका मतलब है वही सबब है तुम्हारे तफक्कुर का, और कौन सी चीज है? वो पीछे क्यों जाते हो रूह की तरफ? उसका जवाब ये है कि जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं उस तरीके से नहीं है। क्यों? अगर हम मिसाल ले लेते हैं, मसलन आप देखें, अगर आप मैं आप देख रहा हूं, देखने का फेल इंजाम दे रहा हूं, तो आप देखें कि ये जो आंख है ये भी एक्टिव है। आंख से लेकर मगज तक के जो चीजें मौजूद हैं वो भी क्या हैं? एक्टिव हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि मगज नजर ना आ रहा होता और कोई बंदा आके ये फैसला करता कि आंख देखने की इल्लत फकत और फकत यही आंख और वो रगे हैं कि जो मौजूद हैं इसके पीछे, बस यही आंख की देखने की जो है असल इल्लत है और मगज का इनकार कर दे, मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। क्यों? क्यों कहते? वो क्या जवाब देगा आके? जवाब ये देगा कि दुरुस्त है कि आंख एक्टिव है देखते हुए, आंख से पीछे जो असाब मौजूद हैं, जो चीजें मग से पहले मौजूद हैं वो भी क्या हैं? एक्टिव हैं। लेकिन इनका एक्टिव होना इस बात की अलामत नहीं है कि दिखने की इल्लत हकीकी फकत ये हों, बल्कि एक और चीज कार फरमा है जिसको हम मग्ज कहते हैं, असल हकीकत वो है। अभी साइंसदानों की जाके आंख देखने के बारे में जो तहलीलियां जाकर पढ़ें, तो हम उनको जवाब देंगे कि जब आपने उबूर कर लिया आंख से लेकर मग्ज से पहले तक कि ये अगरचे एक्टिव हैं लेकिन इल्लत हकीकी नहीं है, बल्कि मग्ज है कि जो एक्टिव करता है इनको, और मग्ज जो है वो इल्लत हकीकी बन रहा है, हम कहते हैं ये भी बात आपकी गलत है। मग्ज ठीक है एक्टिव है, लेकिन इसकी इल्लत हकीकी जो है वो तफक्कुर की देखने की इल्लत हकीकी मग्ज नहीं है, बल्कि क्या है? मग्ज से हटकर एक मावरा एक हकीकत है कि जो इसके जरिए जो है वो इस फेल को अंजाम दे रही है। तो आप इस किस तरीके से आकर उसको इनकार कर देते हैं? बस मालूम हुआ किस तरीके से मुगालता करते हैं, और इस मुगालते की तरफ तवज्जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तवज्जो दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने जवानों को अभी जाकर आप देख लें, वो पहला सवाल यही करते हैं जाकर के, आप रूह के कायल हैं हालांकि तफक्कुर कर रहे हैं, तो ये मग्ज ही तो कर रहा है सब कुछ। तो किसने कहा कि मग्ज अगर एक्टिव है तो एक्टिव चीज जो है वो इल्लत हकीकी कहलाती है? तो यहां पर अब वजीफा बनता है एक फैलसूफ का कि वो यहां पर क्या करे, इल्लत की अकसाम बयान करे, क्योंकि ये फलसफे से तो जाहिल हैं। जाहिर सी बात है, जब ये एतमाद इनका फकत हिस्स व तजर्बे के ऊपर है तो फलसफे पर तो ईमान नहीं है। जब फलसफा नहीं पढ़ते तो फलसफे से सारे क्या हैं? जाहिल हैं। आप स्टीफन हॉकिंग को देख लें, आप रिचर्ड डॉकिंस को देख लें, आप सैम हैरिस को देख लें, डैनियल डेनेट को देख लें, सारे साइंसदान हैं ये। फलसफे के अंदर इनकी जिंदगी गुजरी ही नहीं होती, फकत एक मुख्तसर से मुताले की हद तक है। जब वो मजबूत नहीं होते तो इस मादी फालियतों को बेस बनाते हुए मावराए मादी का इनकार कर रहे होते हैं। और नाम चूंकि साइंसदान साइंस के मैदान में बड़ा बन चुका है, उस बड़े नाम को फिर हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है कि स्टीफन हॉकिंग ने ये कह दिया। खूब, स्टीफन हॉकिंग बड़ा है, बाजमत है, लेकिन अपने इल्म के अंदर। रिचर्ड डॉकिंस अगर माहिर है तो अपने इल्म के अंदर, हम उसकी बात मानेंगे, लेकिन जब वो अपने इल्म के अंदर बात करेगा। स्टीफन हॉकिंग की बात मानेंगे अगर वो अपने इल्म के अंदर रहकर बात करेगा, लेकिन अपने मैदान को छोड़ के बाहर आएगा तो नहीं मानेंगे। जैसा रियाजीदान अगर साइंस बायोलॉजी के अंदर मुदाखलत करता है नहीं मानते, इसी तरीके से यहां भी है कि जो मादियात में घिरे हुए हैं और उनका मौजू भी मादा है, तो मावरा मादा के अंदर वो कभी भी बगैर फलसफे के आप वहां पर मुदाखलत नहीं कर सकते। हाँ, आप फलसफी बने, फलसफे के अंदर महारत हासिल करें, महारत हासिल करने के बाद आकर फलसफी एतबार से साबित करें कि मावरा इमादा नहीं है, मेटाफिजिक उमूर मौजूद नहीं है, और ये कभी भी ये नहीं कर सकेंगे। बदवाजे बस कैसे इस तरीके इस चीज को रद्द करें फिर हम आकर देखें। या मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूं, फिर मुख्तसर सी वजाहत मजीद कर देते हैं और फिर वक्त जो है वो उसके दामन में गुंजाइश कम हो रही है। ये एक और आप देखेंगे साइंस के अंदर, ये तो मैंने आपको न्यूरो साइंस की मिसाल दी है, अभी आप जाकर मसलन दे फिजिक्स के अंदर जाकर चले जाएं, स्टीफन हॉकिंग ने जो है बिग बैंग का नजरिया दिया आकर, और बिग बैंग के जरिए उम्र मालूम कर ली किसकी, कायनात की, कि जमीन की जो उम्र है वो इतनी है, और कैसे ये जमीन वजूद में आई उसकी तफसीर कर ली, और ये तफसीर करने के बाद फिर क्या नतीजा लेना शुरू कर दिया कि पर जब हमने बिग बैंग के जरिए कायनात की इब्तिदा मालूम कर ली है या उसकी तफसीर कर ली है जहान की इब्तिदा की, तो अब जहान की खिलकत की, तो अब खुदा की जरूरत नहीं है, फिर खुदा बीच में क्यों लेके आते हो। अब आप देखें फिर वही मुगालता कर रहे हैं आकर, किसने कहा है कि अगर एक मादा दूसरी चीज में तब्दील हो जाए तो उससे पहले कोई इल्लत मौजूद नहीं होती। बात वाज़े बस। दो बड़ी गलतियां इस किस्म के अफराद अंजाम देते हैं। पहली गलती वो ये अंजाम देते हैं, जिस तरह के मगज़ की आपको मिसाल दी, कि मगज़ को इल्लत हकीकी करार देते हैं, हकीकत में वो इल्लत हकीकी नहीं होता, एक्टिव जरूर होता है, मुअस्सिर जरूर होता है, लेकिन वो इल्लत हकीकी नहीं है। और दूसरी गलती जो करते हैं वो ये कि निज़ाम इल्लियत से जो है वो जाहिल हैं, और ये जहालत जो है उनके इल्हाद का सबब बन रही है। क्या निजाम इल्लियत में जब इल्लत मालूल की बहस पढ़ते हैं जाकर, तो वहां पर एक बात साबित है कि बाज इल्लतें एक दूसरे के तूल में मौजूद होती हैं, जैसा कि अभी आपको मिसाल दी है कि दिखना एक फेल है, इसके अंदर आंख का ये हिस्सा जो शुरू में नजर आता है ये भी मौसर वाकई हो रहा है, इसके पीछे जो एक चीज मौजूद है वो भी मुअसर वाकई हो रही है, और फिर मग्ज भी जो है मुअसर वाकई हो रहा है, कि एक दूसरे के तूल में है, अर्ज में नहीं है कि या मग्ज या आंख, ना, तूल के अंदर है, सिलसिला जो है वो शुरू होगा, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आंख का फेल अंजाम पाएगा, अगर आंख को दरमियान देखने का फेल अंजाम पाएगा, अगर आंख को बीच में से निकाल दिया जाए तो मग्ज नहीं देख सकेगा, और अगर मग्ज को बीच में निकाल दिया जाए तो आंख नहीं देख सकेगी। इसको कहते हैं इलले तूली, एक दूसरे के तूल के अंदर है ये, एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के साथ रहना इनका जरूरी है, तब जाकर एक फेल अंजाम पाता है आकर। तो अब एलले तूली फकत मादी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मुमकिन है और हकीकत भी ऐसे ही है कि ये निजाम इस तरीके से बना हुआ है कि जहां मादी दुनिया के अंदर बाज असबाब मादी हैं, लेकिन हकीकत में जो चीज उनके पीछे कार फरमा है वो मेटाफिजिक उमूर से मरबूत है, कि जिसको हम खुदा कहते हैं। दुरुस्त है? आप इनके एक्टिव होने से इसका इनकार नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी गलती जो है वो अंजाम देते हैं। बिग बैंग का अगर नजरिया दुरुस्त हो जाए, माहिरीन अगर साबित कर दें, शवाहिद अगरचे बहस हो रही है अभी, 100% अभी भी साबित नहीं हुआ बिग बैंग का नजरिया, जिस तरह के आपको बताया डार्विन की थ्योरी भी जो है 100% जो है वो यकीन आवर नहीं है, अगरचे शवाहिद उसके बहुत ज्यादा मिले हैं, लेकिन वो शवाहिद इतने काफी नहीं है कि हम कह सकें कि ये सद दर सद है, और आपको थ्योरियां बयान की हैं कि किस तरीके से जो है वो यकीन तक पहुंचा जाता है, और न कार पूपर के नजरिए के मुताबिक पहुंचा जा सकता है, ना डेविड ह्यूम के जो है वो थ्योरी के मुताबिक पहुंचा जा सकता है, ना रसेल जो है वो इस बात का कायल है कि आप तजर्बी रविश के तहत कभी भी यकीन तक नहीं पहुंच सकते। तो आप किस तरीके से बिग बैंग के नजरिए से आकर खुदा का जो है वो इनकार करना शुरू कर देंगे। हम ये कहेंगे اگر بگ بینگ کا نظریہ درست ہو تو خداوند متعال نے اس کائنات کو اسی ذرے سے بنایا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک باریک اور بہت ہی زیادہ بسیط قسم کا ایک ذرہ تھا کہ جو بعد میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے انفجار ہوا, اس میں پھٹا ہو اور پھر یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں بگ بینگ کے ذریعے جو کائنات کی تفسیر کرتے ہیں وہ جو پہلا ذرہ ہے اس کی تفسیر ابھی بھی نہیں کر سکے گے. ٹھیک ہے, کائنات اس کے ذریعے وجود میں آیا تو وہ خود کہاں سے آیا؟ بتاسے بس یہ مغالطہ جو تھا اس کو کھولنے کی ضرورت تھی, توجہ کرنے کی ضرورت تھی. اور دوسری بات ایک اور عرض کر دوں کہ فلسفے میں آپ جا کر پڑھیں گے ایک علت مادی ہوتی ہے اور ایک علت فاعلی ہوتی ہے. علت مادی اس علت کو کہتے ہیں کہ جو میٹیریل کے طور پر استعمال ہو. مثلا یہ میز جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اس میز کی علت مادی کیا ہے؟ خود یہ لکڑی جس کے ذریعے بنا ہے. اور اس کی ایک علت فاعلی ہے کہ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے. درست ہے, بگ بینگ علت مادی ہے, درست ہے, مغز کی فعالیت علت مادی ہے, ہمیں علت فاعلی کی ضرورت ہے اور وہ علت فاعلی فقط خدا کی ذات ہے. یا مثلا میں ملا صدرہ کی اگر زبان استعمال کروں کہ دقیق ترین تعبیر ہے ملا صدرہ کی, ہمارے پاس ایک علت معدہ ہوتی ہے. اب یہ اسلامی اصطلاحات ہیں فلسفے کی, اب نہیں معلوم اس کا انگلش میں کیا ترجمہ ہو سکتا ہے, آپ دوستان خود محنت کریں گے اس کے آگے. ملا صدرہ کا جو فلسفہ انگلش میں ترجمہ ہوا ہے اس کو جا کر دیکھیں کہ علت معدہ اعداد سے نکلا ہے, میں تو توضیح دوں گا مطلب سمجھ آ جائے گا. اور ایک علت حقیقی ہوتی ہے. علت معدہ اس علت کو کہتے ہیں کہ جو معلول کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ حقیقی علت سے فیض کو قبول کر سکے. اسلامی فلسفے کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ پانی انسان کی پیاس نہیں بجھاتا, پانی انسان کے نفس کو علت حقیقی سے فیض قبول کرنے کے قریب کرتا ہے. والدین بچے کی پیدائش کے لیے علت حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ علت معدہ ہے, اعداد کا کام کرتے ہیں, آمادگی کا کام کرتے ہیں, معلول کو اس قابل بناتے ہیں تاکہ وہ فیض قبول کر سکے علت سے. مادی تاثیر و تأثر کے منکر نہیں ہیں, نہ فلسفہ اسلامی منکر ہے نہ کوئی اور فلسفہ جو عقلی بنیادوں پر ہے, بلکہ قائل ہیں کہ یہ اعداد کا کام کرتے ہیں. اور اصل میں جو چیز کار فرما ہے وہ علت فاعلی ہے, علت حقیقی ہے کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں. بس یہ ایک مغالطہ تھا کہ جو موجود ہے اور بہت زیادہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں, اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. باقی انشاءاللہ پھر بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.